ایک لائف سٹائل، ایک طرز زندگی، ایک ویلیو سسٹم، ایک آئیڈیالوجیکل بیسس ایکسٹریکٹ کرنا ان عشر مجالس کا ہدف قرار پایا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء اپنے اس قیام سے اپنے خطبات میں بھی وہ اپنے خطوط میں بھی، اپنے کلام میں بھی، اپنی گفتار سے بھی وہ اپنی رفتار سے بھی کربلا کی اس موومنٹ میں قدم بہ قدم چند ویلیوز کو متعارف کرا رہے ہیں، قدم بہ قدم چند صفات کو متعارف کرا رہے ہیں، اور انہی فیچرز، انہی کریکٹرسٹکس اور انہی خصوصیات کے نہ ہونے کو اس معاشرے کی بیماری قرار دے رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ فرش عزا، یہ ذکر حسین، یہ ذکر کربلا و ذکر عاشورا سید الشہداء کی اسی طبابت کو دریافت کرنے کا نام ہے، سید الشہداء کی اسی سوشل پیتھولوجی کو سمجھنے کا نام ہے، جو کہ فقط ایک انڈیویجول، ایک فرد کو، فقط فرد کو ہی نہیں بلکہ ایک معاشرے کو ان آفتوں، ان بحرانوں، ان تہاجموں، ایک انویژن ڈیزاسٹر، اس سے نکالنے کے لیے پہلے سے ایک تدبیر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی معاشرہ اس طرح کی صورتحال کا شکار ہو جائے جیسے اس وقت کوفہ مدینہ، مکہ، بصرہ، شام، عراق، یمن ہو رہا تھا. سید الشہداء معاشرے کی ایسی تباہی کرنا چاہتے ہیں، ایسی سوشل ڈائگنوزنگ کرنا چاہتے ہیں ان بیماریوں کو کہ جو سوسائٹی کو لگ جاتی ہیں، تاکہ رہتی دنیا تک نہ ایسا طبیب کوئی آئے گا، نہ ایسا معاشرہ شناس کوئی آئے گا، نہ ایسا دین شناس کوئی آئے گا جو اپنے زمانے کے رگ رگ سے واقف ہو. اور اسی ڈائگنوزنگ کو سید الشہداء اپنے کلام میں پیش کر رہے ہیں، جہاں بھی مناسب وقت پاتے ہیں اسی تبابت کو اپنے کلام کے اندر پیش کر رکھے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض ہوا 3 سے 4 بیماریاں جو اس معاشرے کو لگی ہوئی تھیں. سب سے پہلی کہ عدم معرفت، جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اپنے ارد گرد کو ویسا نہیں دیکھ رہے تھے کہ جیسا وہ تھا، اپنے حاکم کو ایسا نہیں دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ تھا، کہ سید الشہداء کو آگے بتانا پڑا کہ یزید شارب الخمر اور ساری صفات جو یزید کے لیے سید الشہداء نے بیان کی کہ آپ کی خدمت میں تکرار کی ہے. لیکن یہی درد، یہی غم، یہی موٹیویشن کوفہ کے اندر باقی افراد پہ سید الشہداء نہیں پا رہے تھے، اور وہ ظلم و ستم جاری و ساری تھا. اس جاری و ساری ظلم و ستم کے اندر جو کچھ سید الشہداء دیکھ رہے تھے، باقیوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ یہ درد سید الشہداء کے دل میں تھا کہ ان کو قریب سے وہ فساد، وہ ظلم، وہ فسق دکھانا ہے جو یہ اپنی زندگی کے روٹین میں ایک ریگولر فیشن کے اندر صبح شام کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ عکس العمل نہیں دکھا رہے اس سوسائٹی کی ڈس آرڈر کے اوپر کہ جو عکس العمل میں دکھانے جا رہا ہوں. اور اس تمام ظلم اور بربریت کی جو روٹ کو سید الشہداء بتاتے ہیں وہ یزیدیت کی حکومت ہے، اس طرز کی حکومت ہے. جب حکومت شرابیوں کے ہاتھ میں آ جائے، حکومت پست انسانوں کے ہاتھ میں آ جائے، حکومت گھٹیا افراد کے ہاتھ میں آ جائے، سید الشہداء کہتے ہیں یہ روٹ کاز ہے، میں اس کے خلاف نکلوں گا. لیکن اس کے خلاف نکلنے میں میری نگاہیں امت کے اوپر، سارا فساد یزید میں گئے لیکن اصلاح امت کی کرو گے. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، چونکہ ایسا کرپٹ حاکم، ایسا کرپٹ گورنر، ایسا فاسق و فاجر، ایسا پست انسان منصب اقتدار پہ آ کیسے گیا؟ یہ ظلم کی چکی، یہ بڑی اچھی مثال ہے. ظلم کی چکی کی مثال بڑی زبردست مثال ہے. اگرچہ ہمارے جوانوں نے، اس جنریشن نے، ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے دور کے ان جوانوں نے ظلم کی چکی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بھارت چکی کا ایک مفہوم سب کے ذہنوں میں ہے کہ قدیم سے یہ رواج تھا چکی کا کہ دو بڑے پتھر جو کہ گول، دو سرکلز اور پتھر ایک دوسرے کے اوپر ہوتے گئے، نیچے کا جو پتھر ہوتا ہے، اگر یہ مثال آپ کے اذہان کے قریب کر سکا، آپ کو اس معاشرے کی حالت کا اندازہ ہو جائے گا، آپ کو کوفے کی کرنٹ افیئرز کا پتہ چل جائے گا، کوفے کی حالات حاضرہ اس وقت کیا تھے، مکے کے حالات حاضرہ کیا تھے، شام میں کیا ہو رہا تھا، یہ ظلم کی چکی چلی کیسے. واقعی ظلم کی چکی تھی. چکی کے اندر ہوتا کیا ہے، اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو بزرگ تشریف فرمائے جانتے ہیں، کہ نیچے کا حصہ اس کا اسٹیٹک ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، وہ بھی ایسی پتھر ہوتا ہے گول بھاری، اس کے اوپر کھردراہٹ ہوتی ہے، لیکن نیچے کا حصہ ثابت ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اور ویسے ہی گول پتھر رکھا جاتا ہے، اور چکی انہی دو پتھروں کا نام ہوتا ہے. یہ جو اوپر بہت بھاری پتھر رکھا جاتا ہے اس کو موو کرنا ہوتا ہے، اس کو گھومنا ہوتا ہے. نیچے جو پتھر ہوتا ہے، جب تک یہ پتھر ثابت ہو، اسٹیٹک ہو، اور اوپر والا پتھر اس کے اوپر موو کر رہا ہو، ان دو بھاری پتھروں کے درمیان کسی بھی چیز کو پیس دیا جاتا ہے. بہت سمپل سی مثال. یہ کام جو ہے، یہی मेथड को आज टेक्नोलॉजी के जरिए से मशीन्स के जरिए से किया जाता है, लेकिन पहले ये आम तरीके से मैनुअल, एक भारी पत्थर उसके ऊपर एक और भारी पत्थर, ऊपर के पत्थर को मूव करना है, नीचे के पत्थर को साबित रहना है। ये जुल्म की चक्की की बहुत आली मिसाल है किसी भी मुआशरे के अंदर। ये जो ऊपर की इस चक्की का जो ऊपर का हिस्सा है, ये मिसाल उसी हुकूमत, हाकिम, मुक्तदर, जालिम की मिसाल है कि ये मेजर्स ले रहा होता है, ये मूव कर रहा होता है, ये जुल्म कर रहा होता है, ये एक्शंस कर रहा होता है, ये फाल होता है, एक्टिव होता है, ये हिल रहा होता है, लेकिन इसका जुल्म, इसकी एक्टिविटी, इसका घूमना जब तक कारामद होता है, जब तक नीचे का हिस्सा खामोश हो। अब आप पहुंच रहे हैं उस मकसद की तरफ, उस मतलब की तरफ। जब तक चक्की के नीचे का हिस्सा साबित हो और ऊपर का हिस्सा मूव कर रहा हो, तब इसके दरमियान किसी को पीछा जा सकता है। अब वो मेहनत नबूवत, वो मेहनत रिसालत, वो तबलीग इमामत, वो दीन खालिस, मदीने से कूफा, कूफा से बसरा, मक्का, यमन, शाम, वो इसी जुल्म की चक्की में पिस रहा था कि बनू उमैया की हुकूमत की जुल्म की चक्की के ऊपर का हिस्सा जुल्म कर रहा था, लेकिन नीचे अवाम, चक्की के नीचे की मिसाल है। वो जो नीचे का पत्थर है वो उस माशरे के अवाम है, चूंकि वो खामोश थे, चूंकि वो बेशऊर थे, चूंकि उनमें मारिफत नहीं थी, चूंकि सोच नहीं रहे थे, चूंकि शऊर बुलंद नहीं था, लिहाजा इस जुल्म को दर्द नहीं कर रहे थे, इस जुल्म पे अक्सुल अमल नहीं दिखा रहे थे। अगर किसी माशरे के अंदर इख्तदार, हाकिम, मुक्तदर तबका जो जुल्म कर रहा होता है, वो बादशाह, वो जाबिर, वो सुल्तान, यानी चक्की के ऊपर का हिस्सा, वो मूव कर रहा हो लेकिन माशरा नीचे से अक्सुल अमल दिखा रहा हो, रिएक्शन दिखा रहा हो, जितना वो जुल्म कर रहा हो नीचे का हिस्सा उतना उसके खिलाफ रिएक्शन दिखा रहा है, यानी चक्की के दोनों हिस्से साथ साथ घूम रहे हैं। अब आप करीब आ जाएंगे इस वक्त के, ऐसी चक्की में किसी चीज को पीसा नहीं जा सकता। आप इसके अंदर गंदुम रखें, आप इसके अंदर जौ रखें, आप इसके अंदर चने रखें, आप इसके अंदर कुछ भी रखें, अगर दोनों पार्ट साथ साथ घूम रहे हैं, दोनों को जुदा करेंगे, वही चीज दोबारा की दोबारा सालिम आपको मिल जाएगी। पर जुल्म की चक्की की मिसाल इसलिए दी जाती है, जिस माशरे के अंदर जुल्म हुकूमत की तरफ से हो रहा हो, पस्त और घटिया हाकिमों की तरफ से हो रहा हो, लेकिन अवाम में बेशऊरी हो, अवाम में रिएक्शन दिखाने की ताकत ना हो, अवाम में बुजदिली हो, अवाम में जहालत हो, अवाम में डर हो, अवाम में खौफ हो, ऐसी जुल्म की चक्की में मेहनत रिसालत पिस जाती है, ऐसी जुल्म की चक्की में रसूल की सुन्नतें पिस जाती है, ऐसी जुल्म की चक्की में इस्लाम की आइडियोलॉजी पिस जाती है। इस जुल्म की चक्की का मुशाहिदा सैयदुल शुहदा कर रहे थे। अब यहां पर जरूरत थी इस अम्र की कि कोई इस नीचे वाले हिस्से को हिलाए। सैयदुल शुहदा ने ऊपर वाले हिस्से को रोकना नीचे वाले हिस्से को हिलाने के अंदर समझा कि मुझे वो यजीदियत, वो यजीदी हुक्मरानी, वो यजीदी ग्रुप, वो पूरा सिस्टम, मुझे पता है इसके बाद एक और यजीद आएगा, फिर और जालिम आएगा, फिर बनू उमैया, बनू अब्बास, आपने देखा पूरा सिलसिला जारी था, सारी तकोतो आइमा ने इस नीचे के हिस्से के ऊपर की, इनका शऊर बुलंद किया जाए, इनकी मारिफत को बुलंद किया जाए। इसलिए आपसे कहा हुसैनी लाइफ स्टाइल, यानी माशरे के अंदर मारिफत, लोग सोच समझ के अमल करें, चीजों को वैसा देखें जैसी वो है। अब यहां पर जो मंजर देखने को मिलता है, जब सैयदुल शुहदा उठे, कयाम किया, अब लोग समझ नहीं रहे, साथ नहीं दे रहे। आज उसी लाइफ स्टाइल की एक और चीज जिसपे सैयदुल शुहदा ने काम करना शुरू किया और बाकी आइमा ने भी इसके ऊपर काम किया, क्योंकि ये फर्क सैयदुल शुहदा के दौर में ये काम मुकम्मल नहीं हो पाया था कि लोगों के दीन के अंदर मिलावट हो गई थी। बनू उमैया ने जो बेहतरीन काम ये किया, लोगों से ये नहीं कहा कि काफिर हो जाओ, ऐसा इस्लाम उनको सिखाया जो कुफर से बदतर था। ये नहीं कहा कि काफिर हो जाओ, काफिर होने में कहते लोग रिएक्शन दिखाते थे, तेज तर्रार ज़हन, अमर इब्ने आस, अमीर शाम, शातिर ज़हन, उन्होंने कहा अगर इनसे बोले कि काफिर हो जाओ ये रिएक्शन दिखाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके इस्लाम को इम्प्योर कर दो, इनके इस्लाम को डायल्यूट कर दो, इनके इस्लाम को मिक्स कर दो। ये काम बड़ी तेजी से रसूल खुदा के फौरन बाद शुरू हुआ, फौरन बाद रसूल खुदा की आंख बंद होती है, इस्लाम के मुहाफिज के हाथ में हुकूमत ना आए, ऐसे शख्स के हाथ में हुकूमत आ गई कि जो उस मसनद इक्तदार का अहल नहीं था, हदीसों के ऊपर पाबंदी, रिवायत बयान करने के ऊपर पाबंदी, ताकि फजाइल अली जो नबी ने बयान किए हैं कहीं माशरे में तेजी से सरायत ना कर जाए। अगर किसी को अली की फजाइल मालूम हो जाए, अगर किसी को अली की फजीलत मालूम हो जाए, फिर हमें हक के हुकूमत कौन देगा, फिर हमें इक्तदार पे कौन आने देगा। पर बेहतरीन रास्ता यह है डायल्यूट कर दो, मिक्स कर दो चीजों को, इस्लाम और गैर इस्लाम को मिक्स कर दो, इस्लाम को इम्प्योर कर दो। अब यहां पे हुसैनी लाइफ स्टाइल क्या है, तर्ज अमल क्या है, अपने अपने इस्लाम को चेक करते रहो, अपने अपने इस्लाम पे निगाह रखो कि मुझे कौन सा इस्लाम बताया जा रहा है। इस्लाम की डिफरेंट फॉर्मेट्स नबी अकरम के फौरन बाद से शुरू हो गए, हत्ता साहबा के दरमियान, हत्ता उसके बाद फिर जो चीजें आई आपस में आई, यानी इतना मिक्स हो गया मामला, इतना मिक्स हो गया मामला कि लोग यजीद और हुसैन में फर्क नहीं कर पा रहे, इनका साथ देंगे उसका साथ। लोग कहते थे ये तो उलिल अम्र है, उलिल अम्र के खिलाफ कायम करना तो जायज नहीं है, जो जिस तरीके से भी हुकूमत के अंदर आ जाए। ये एक मिक्सअप बनी उमैया ने किया कि जो भी एक्टिव हाकिम है उसके खिलाफ कायम करना बगावत, उसके खिलाफ, ये जो आप जानते हैं अभी जो पाकिस्तान के अंदर एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन उठा था 10 साल पहले 2010-2012 के अंदर, कि जिसके अंदर ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान आए थे, अगर आपको याद हो आपके अजहान में हो, 2012 की तकरीबन दास्तान है, और इस्लामाबाद को कंटेनर मूवमेंट चली थी, और एक अजीब सबके लिए था कि भाई आपके तो मजहब में जायज़ नहीं है, आपके यहाँ तो जो भी हाकिम है वो उलिल अम्र है, आप किस दलील से आके उलिल अम्र के खिलाफ कयाम कर रहे हैं। आप तो उस वक्त कहते थे जो भी हो यजीद के खिलाफ निकलेगा वो बागी होगा, और इस दलील से आपने हुसैन से दूर किया था इतने बड़े हिस्से को, कूफा के, मक्का के, मदीने के, उनकी नाकामी इसी वजह से 2012 में हुई थी कि उलमा की तरफ से, और उनके मसलक के उलमा की तरफ से भी, उनके अलावा भी, कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन, एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन जिसको हमने उस जमाने में स्टडी किया था, और वेलवेट रेवोल्यूशन इसको कहते हैं, कि अपनी जगह पर एक पूरी दास्तान है, वो लाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान के अंदर, और वो भी इस्लाम के नाम पर। तो उनकी सबसे बड़ी नाकामी, जो खुद दीनदारों ने उनका साथ नहीं दिया, वो यही था भाई हमारे कयाम में तो जो जैसा भी हाकिम है, अब जब इक्तदार पर आ गया, जो भी इसको कुर्सी से उतारने की कोशिश करेगा ये उलिल अम्र के खिलाफ बगावत है और ये जायज नहीं है। और बनू उमैया ने अपना इक्तदार बचाने के लिए इसको रसूल खुदा की अहदीस के तौर पर फैलाना शुरू कर दिया था, मिक्स करना शुरू कर दिया। आज भी हम इसी तरह की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, सिर्फ इस्लाम नहीं, इस्लाम के फिर नीचे भी जितने भी इस्लाम के बुनियादी चीजें हैं उनको मिक्सअप किया जाए, जैसे हज, हज को डाइल्यूट किया जाए, हज को इम्प्योर किया जाए, हज की वो रूह निकाल लें इसमें से, वो जो इकबाल कहते थे कि उठता गया हूं या रब में मरमर की सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दे। इकबाल ने कहा था कि ये हरम, ये काम हमारी मुश्किलात हल कर सकेगा, यानी ये जो आल सऊद ने हज को जो लग्जरी किया वही बनू उमैया की कंटिन्यूशन, बनू उमैया का तसलसल, वहाबियत, उसने आके हज के नक्शे को लग्जरी बनाया, टूरिज्म के अंदर तब्दील कर। तो इकबाल इसको देख रहे थे 100 साल से, और वो इकबाल ने कहा कि ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इकबाल उसी तरफ इशारा कर रहे थे। अब यहां पे बहुत कम शख्सियात ऐसी आई हैं, क्योंकि वाकई एक बाशऊर मुखातबीन मेरे सामने है, इसलिए मैं बहुत आसानी के साथ इशारे करते हुए अपने मतलब को तेजी से आगे लेके जा सकता हूँ। जैसे जमालुद्दीन अखवानी, उन्होंने बात की, ईरानी उनको जमालुद्दीन असदाबादी कहते हैं और अफगानिस्तान अहले अफगानिस्तान कहते हैं, उनका हमसे ताल्लुक है जमालुद्दीन अखवानी, पैगम्बर बेदारी हैं उम्मत इस्लामी कहते हैं। ऐसे ही अल्लामा इकबाल हैं, अल्लामा इकबाल ने फौरन इस नुक्ते की तरफ इशारा किया कि जो इस्लाम तुम्हारे पास है ये तो इस्लाम की सही शक्ल ही नहीं है। और यही जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद सैयद शहदा ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि अगर इस्लाम के ऊपर यजीद जैसा हाकिम बरसर इक्तदार आ जाए फअलल इस्लाम अस्सलाम, यानी हम उर्दू के अंदर कहें, अहले अदब तशरीफ फरमा है कि जिस इस्लाम के ऊपर यजीद जैसे हाकिम को हाकिम बनने की फुर्सत मिल जाए और वो भी मुसलमानों का खलीफा इस्लाम के नाम पर, तो जैसे इस इस्लाम की फातिहा पढ़ देनी चाहिए। ये तशरीह सैयद शहदा ने दी और इकबाल ने इसकी तर्जुमानी की। तुमने देखा जमालुद्दीन अखवानी ने वहां से मैसेज लिया करबला से। क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें करबला को थोड़ा सा ऊपर जाके देखने की जरूरत है, थोड़ा बुलंद फिक्र अफराद जिनका उफक बहुत वसी है उनसे करबला सीखने की जरूरत है। और कभी भी कोई पेशावर, कोई ताजर जो मसाइब को भी अपनी तिजारत समझता हो, फजाइल को भी अपनी तिजारत समझता हो, खिताबत को भी अपनी तिजारत समझता हो, वो कभी करबला नहीं समझा सकता। करबला वही समझाता है जिसके अंदर वो दर्द हो, वो दिल हो, जो हुसैन से उसके पैगाम दोने दरियाफ्त करे। इकबाल ये काम कर रहे थे और इकबाल ने ये काम किया। बस ये जब मिक्सअप हुआ, ये दीन उस वक्त भी हुआ, आज भी हम माशरे में देख रहे हैं। और इस मौजू को बंदे हकीर के लिए, इस दीनी तालिब इल्म के लिए, जिस शख्सियत ने सबसे ज्यादा हल किया कि दीन इम्प्योर कैसे होता है एंड हाउ टू प्यूरिफाई अवर इस्लाम, और हम इसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे, वो इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत है, जिन्होंने इस सदी के अंदर जब इमाम खुमैनी ने वही दीन पढ़ा जो हम पढ़ते, वही कुरान, वही चीज, वही रिसोर्सेज, वही सोर्सेज इस्लाम के लिए थी, लेकिन एक बड़ी पाकीदा दीन शनासी की तस्किया, तस्किया नफ्स, मानवियत, खुदावंद मुताल ने हकायक इमाम खुमैनी के दिल के अंदर डाल दी। अब वही चीज जो अल्लामा इकबाल भी बता रहे थे, जमालुद्दीन अखवानी भी बता रहे थे, किसी हद तक जमात इस्लामी के जो बानी है और अजीम शख्सियत मौलाना मौदूदी, उन्होंने भी इशारा किया इस चीज की तरफ, उनकी किताब खिलाफत और मुल्कियत करके उन्होंने भी इशारा किया। अगरचे अभी फ़ेलन जो जमात इस्लामी ने जो वो उनका मंशूर था उससे बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं करती, जो कुछ बंदा हकीर ने अल्लामा मौदूदी को पढ़ा, उनकी राइटिंग्स को पढ़ा और उनकी थ्योरी को पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अल्लामा मौदूदी इस तरह इशारा कर रहे थे। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने ये टर्मिनोलॉजी निकाली और कुरान, इकबाल और इमाम खुमैनी से बंदा हकीर ने एक रिसर्च की, कुरान से देखा उसी को, इस बात को कुरान ने क्या कहा है, कुरान किस तरह में दीनुल खालिस, अल्लामा इकबाल ने अपने फारसी कलाम में इसे कहा मशरब नाब, खालिस मशरब, मशरब नाब। इमाम खुमैनी किस तरह थी इस्लाम नाब, खालिस इस्लाम। और सबसे पहले इमाम खुमैनी ने काम किया कि इस्लाम को सबसे पहले खालिस करना पड़ेगा। ये जो मुसलमान को खालिस करना चाहते हो, मुसलमान को मोमिन करना चाहते हो, मुसलमान को हकीकी करना चाहते हो, इसके निसाब को पहले पाक करो। इसके सामने जो इस्लाम है, इमाम खुमैनी की बकायदा आइडियोलॉजी थी, उसके अंदर इमाम खुमैनी फरमाते थे ये तीन किस्म का इस्लाम हमारे पास है। और मिसाल बड़ी प्यारी हमारे उस्ताद देते हैं इमाम खुमैनी के मतलब को आसान करने के लिए, कि बच्चे भी समझ सकें कि किस तरह इमाम खुमैनी की इस टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते थे, एक प्योर वर्जन ऑफ इस्लाम, इस्लाम ऑफ अहलुल बैत, द प्योर इस्लाम, और उसके मुकाबले में वो इस्लाम जो इम्प्योर था, उस इम्प्योर इस्लाम को दो हिस्सों में तकसीम करता है कि ऐसा इस्लाम दो तरीके से, जब पहले वो मिसाल दे दूं, शायद मिसाल के साथ फिर ये बात ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी। एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद भेजो मोहम्मद वाले। जैसे हम आप देखते हैं बच्चे गजा खाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, दो साल से पहले की गजाएं अलग होती हैं, सिरिलैक और डिफरेंट उनके दूध के वो फॉर्मेट्स आते हैं, डिफरेंट वर्जन होते हैं जो कि बढ़ते चले जाते हैं एज के साथ साथ। अब बच्चा दो साल से बड़ा हो गया, उसकी गजा बढ़ती चली जाएगी। अब तीन साल का हो गया, चार साल का हो गया, ठीक है, अब ये ठोस गजाएं भी खा सकता है। अब इसके साथ साथ ये सिलसिला इसकी गजा का बढ़ रहा है, जितनी जिस्म के अंदर डाइजेस्ट करने की ताकत और तमन्नाएं आ रही हैं उतना इसकी गजाएं तब्दील हो रही हैं। और जब ये बड़ा होता है, बालिग होता है, अब एक बहुत बाशऊर है, अब दीन को अच्छे तरीके से समझ सकता है। यानी वो जो पांच साल का था उसको बस याद था कि पहला तौहीद, दूसरा नबूवत, तीसरा इमामत, चौथा अदल कयामत। अब ये जो पांच उसूल दीन इसको याद थे, मुश्किल ये आ रही थी कि जितना बढ़ता जा रहा था गजाएं तो बढ़ रही थी लेकिन शऊर के बढ़ने के साथ साथ दीन नहीं बढ़ रहा था। इमाम खमेनी ने इस चीज को देख लिया, यानी ये है 20 साल का, इसकी तौहीद है वही 5 साल वाली, ये है 30 साल का, इसका कुरान वही वाला 8 साल वाला कुरान, ये है 40 साल का, इसकी कुरान शनासी वही बचपने वाली है। आज भी इससे मुझे आइमा बताते हैं 12 इमाम अंबिया 1,24,000, ये तो आपने जब आप 5 साल के थे तब भी आपको बता दें। लेकिन इसकी सिन के साथ साथ जैसे इसकी गजा बढ़ रही है और अब ये ठोस गजा खा सकता है, ऐसे ही अब ये ठोस तौहीद समझ सकता है, अब ये ठोस विलायत समझ सकता है, अब ये ठोस इमामत समझ सकता है, अब ये ठोस करबला समझ सकता है। लेकिन इस खतीब ने इस शऊर का एहतराम नहीं किया, इसको वही करबला रिपीटेड बताता रहा, समझाता रहा, इसकी करबला शनासी इसके शऊर के मुताबिक गलत नहीं की। ये मेंबर से एक उदाहरण, और उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि हुसैन कूफे का शऊर बढ़ा रहे थे और मैं मिंबर पर हुसैन का वारिस हूं। हुसैन मुझसे पूछेंगे जितने जितने सामईन ने तुम्हें जितने घंटे दिए थे, हुसैन तुमसे पूछेंगे जब तुम्हारी मजलिस से उठकर जाते थे कितना हुसैनी शऊर उनमें बढ़ता था, कितना हुसैनियत की कश्ती में सवार होते थे, कितना तर्ज जिंदगी के लिए वैल्यूज मिलती थी। अब करबला को जब रिचुअल्स बना दिया गया, उन्होंने कहा ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें यहां से सवाब चाहिए, हमें यहां से निजात चाहिए, हुसैनियत आखिरत संवारने से पहले दुनिया संवारने का नाम, हुसैनियत आखिरत नूरानी करने से पहले सोसाइटी नूरानी करने का नाम, हुसैनियत आखिरत बचाने से पहले सिस्टम बचाने का नाम है, हुसैनियत आखिरत निखारने से पहले लाइफ स्टाइल को निखारती। बस तीनों टर्मिनोलॉजी कुरान ने कहा दीनुल खालिस, इकबाल ने कहा मशरबे नार, इमाम खुमैनी ने फरमाया इस्लामे नार। शिबायत मर्दरा तब ए बुलंदी मशरब नाबी, ये इकबाल का शेर है फारसी का। एक मर्द को मर्द होने के लिए, यानी मोमिन की मिसाल दे रहा है, एक बेहतरीन मोमिन बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मशरब नाब खालिस इस्लाम, प्योर इस्लाम चाहिए। और इसी तरीके से कुरान भी यही कह रहे हैं कि कुरान की सलाह दीन खालिस के नाम से कि खुदा के लिए फकत दीन खालिस है और इसके अलावा खुदा कबूल नहीं करेगा। अब दो तरीके से इम्प्योर हुआ, जैसे बिल्कुल दूध इम्प्योर होता है, दूध आप देखते हैं माशरे के अंदर सब जानते हैं दूध को इम्प्योर करने के लिए दो काम किए जाते हैं, या दूध के अंदर जो उसका असल एसेंस है उसको निकाल लिया जाए, जैसे दूध की क्रीम निकाल ली जाए, जिस दूध की क्रीम निकल चुकी हो अब दूध के लिए खुदा ने क्या कहा है, अहले बैत के कलाम में भी आया है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं दूध क्या है, दूध एक मुकम्मल गजा है, या बचपन से सुनते दूध एक मुकम्मल गजा है, मेरी कमाल है दूध। और इसकी मिसाल इसी की जो मैंने कहा उस्ताद ने मिसाल दी, बड़ी बेहतरीन मिसाल दी, जैसे इस्लाम एक मुकम्मल तर्ज हयात है, इस्लाम एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है, इस्लाम एक कंप्लीट कोर्स ऑफ लाइफ है। इस्लाम को जरूरत नहीं है माशरे के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए इस्लाम के अलावा किसी से गाइडेंस लेने की, लेकिन जिस इस्लाम को डायल्यूट कर दिया गया हो दूध की तरह, या तो उससे उसकी क्रीम निकाल ली जाए दूध से, या दूध में कुछ मिला दिया जाए, दो तरीके से दूध ना खालिस हो जाता है। तकरीबन जो अजान है वो पहुंच गए मेरे मतलब जहां मैं लेके जाना चाहता, दूध से क्रीम निकाल के दूध को नाखालिस किया जाता है और इस्लाम से विलायत निकाल के इस्लाम को नाखालिस किया जाता है, इस्लाम से इमामत निकाल के इस्लाम को नाखालिस किया जाता है, इस्लाम से लाइफ स्टाइल निकाल के इस्लाम को नाखालिस किया जाता है, इस्लाम से निजाम निकाल के इस्लाम को नाखालिस किया जाता है, इस्लाम से सिस्टम निकाल के पॉलिटिक्स निकाल के सियासत निकाल के इस्लाम को नाखालिस किया जाता है। बनू उमैया ने यही काम किया, कहा तुम हुसैन से नमाज सीखो, वुजू सीखो, मानवियत सीखो, दुआ सीखो, गुस्ल सीखो, आकाम सीखो, हुकूमत कौन करेगा? हुकूमत हम करेंगे। इख्तदार पे कौन बैठेगा? इख्तदार पे हम बैठेंगे। पढ़ाएगा कौन? हुसैन। दर्स कौन देगा? हुसैन। दुआ कौन बताएगा? हुसैन। वजीफे कौन बताएगा? हुसैन। सिस्टम किसका होगा? यजीद का, हमारा। अब सैयद शोहदा ये मंजर देख रहे थे, ये आहिस्ता आहिस्ता पहले नबूवत से जो इमामत की बारी आनी थी, पहले नबूवत से खिलाफत तक आए, खिलाफत से मुलुकियत तक आए, मुलुकियत से जमहूरियत तक आ गए, प्योर जमहूरियत, लिबरल डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं वेस्ट के अंदर, ये पूरा सफर तय हुआ है। नबूवत से जहां इमामत तक आना था, पहले थोड़ा सा आए, खिलाफत तक आए, फिर खिलाफत से मुलुकियत, अल्लामा मौदूदी की जो किताब है खिलाफत और मुलुकियत, तफसील से अल्लामा मौदूदी ने बयान किया, बादशाह तक आ गए बिल्कुल। बनू उमैया के अल्लामा मौदूदी ने कहा बादशाहत का सिलसिला शुरू हो गया था, फिर वो खिलाफत भी नहीं रही है। एक छोटा सा डिफरेंस है कि खिलाफत के अंदर कानून खुदा का होता है लेकिन हाकिम खुदा का नहीं होता, ये इमामत और खिलाफत में डिफरेंस है। इमामत की आइडियोलॉजी में हाकिम भी खुदा से मिलेगा, कानून भी खुदा से मिलेगा और एग्जीक्यूशन भी खुदा के नुमाइंदे के जरिए से हो, लेकिन खिलाफत में कुरान होता है, कानून होता है, लेकिन वो जो उसके ऊपर हाकिम होता है वो खुदा की तरफ से होता है, ये डिफरेंस है। लेकिन उसके बाद फिर कानून भी चला गया, फिर खिलाफत से मुल्कियत पे आ गए, फिर सब कुछ बिल्कुल खुदा निकल गया, आखिर में बिल्कुल एक सिस्टम जो फ्रांस के अंदर 250 साल पहले आया जमहूरियत डेमोक्रेसी, अब खुदा को बिल्कुल निकाल दे, कानून भी अवाम बनाएंगे, हाकिम भी अवाम बनाएंगे, सिस्टम भी अवाम बनाएंगे, सब कुछ जमहूर के हाथ में होगा, जो जमहूर कहेगा वही कानून होगा, जो जमहूर कहेगा वही हाकिम होगा, जो जमहूर कहेगा वही आईन होगा। खुदा से पूछना है, हाँ खुदा से पूछना है। फिर इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने इमामत और विलायत की ज़माने ग़ैबत के अंदर एक तफसीर की जिसका नाम उन्होंने इस्लामी जमहूरियत रखा, कि आज के दौर में अगर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है इस्लाम की, जिसको इंशाल्लाह मैं छठी मजलिस में आपकी खिदमत में खोल के बयान करूंगा, कि इमामत आज सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, इमामत खुदा, इमामत नबी, इमामत अली, इमामत महदी, इमामत फकी, और एक बाप को भी इमामत हासिल है, एक इमाम जमात भी है, इमामत है जमात। ये इन इमामतों की कैटेगरीज हैं जो एक दूसरे के मुकाबले में नहीं है बल्कि एक दूसरे के तहत हैं, ये इनकी खूबसूरती है। लड़ी पर लड़ी, कदम ब कदम, इमामत के बगैर नहीं। इंशाल्लाह शरीफ मजलिस में तफसील से बयान करूँगा सिस्टम ऑफ इमामत को, सैयद शोहदा ने कैसे बयान किया, इमाम सादिक ने क्या कहा, फिर उसके एक्सट्रैक्ट करते हुए इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने इमामत को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तस्वीर है इमामत को कैसे बयान किया, कि दुनिया इमामत के बगैर नहीं रह सकती, खत्म है नबूवत हुआ है, खत्म है इमामत नहीं हो सकती। जब जहान नहीं था पहले इमामत थी फिर जहान बना, जब आदम जो कह रहे हैं कि आदम और भी मट्टी और पानी के मरहले तय कर रहे थे, मैं उस वक्त भी नबी था तो अली भी उस वक्त भी इमाम थे, कि जब आदम मट्टी और पानी के मरहले तय कर रहे थे, पहले खुदा इमाम को भेजता फिर आगे मरहला शुरू होता उम्मत बाद में आती, कयामत में भी सब कुछ समझे, आखिर में इमाम जाएगा दुनिया से, उसको इंशाल्लाह पूरी के बाद में बयान करूंगा। बस इसको इम्प्योर किया गया, इस्लाम से उसकी क्रीम यानी इमामत निकाल ली, पॉलिटिक्स निकाल ली, सियासत निकाल ली, कहा सियासत हम करेंगे, बाकी ये दुआएं नमाजें हज वगैरह ये जब नवासे आए नबी के तो इनके साथ तो मिलके हज कर लिया। और सैयद शोहदा देख रहे थे मेरी पोजीशन हाकिमियत की थी, मेरी पोजीशन इख्तदार की थी, मेरी पोजीशन इमामत की थी, मुझे बना दिया गया मौलवी, एक मौलवी जैसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दुरूद भेजो मोहम्मद वाले, हम बहुत खुश भी होते हैं कि इमाम सादिक को इमाम नहीं माना गया लेकिन कम से कम मौलवी माना गया। और ये इमाम सादिक की मजलूमियत है, फजीलत होने के साथ साथ मजलूमियत है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का डीन हो और उससे कोई कहे कि भाई आप तो पूरी यूनिवर्सिटी के डीन हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स आपके अंडर में आते हैं लेकिन प्लीज़ आप डीन की चेयर पे ना बैठें, आप डेली आके फिजिक्स पढ़ा दिया करें, अब हम भाई फिजिक्स तो पढ़ाते हैं ये कितनी फजीलत है, हम कहेंगे नहीं इसकी ये जो है वो मजलूमियत है, ये फिजिक्स इसको पढ़ानी पड़ रही है, जिस यूनिवर्सिटी का ये डीन है उसको फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं है, इसका इसका जो मकाम है वो ये है कि सुपरवाइज कर रही है फिजिक्स के टीचर्स को। या बिल्कुल मैं आपके अगर हम अपने मतलब फौज की मिसाल दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आके बिल्कुल एक सिपाही की दर्जे का काम करना पड़े, आप कहेंगे नहीं भाई देखिए ये कितना वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये तो बहुत मजे की मजलूमियत है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सुपरवाइज करे तमाम उसको, ये आपने उसकी इहानत की अगर आपने उसको ऐसे दर्जे पर लाके खड़ा कर दिया, उसको उसकी जगह मिलनी चाहिए। इसको कहते हैं हिफ्ज़े मरातिब, जिसका जो मर्तबा है उसको अपनी जगह पे होना चाहिए, हिफ्ज़ होना चाहिए उसकी जगह, और हिफ्ज़े मरातिब को हर फितरत मानती है। बस ये काम इस्लाम के साथ हुआ। अब इस्लाम के अंदर डाला क्या गया, निकाला तो करीम इमामत ये दूसरा हिस्सा, और हमारे माशरे में भी इस्लाम के अंदर तीन चीजें मिलाई गई उस जमाने में भी, और जब भी अंबिया आते थे तभी ये काम होता था, अंबिया आते थे कहते थे भाई ये तौहीद ये नबूवत, मैं नबी हूँ वो खुदा है और आखिर में क़यामत होगी, अच्छे काम करोगे तो जन्नत में वरना दोज़ख में, ये तीन बातें हर नबी करता था, और वो उसके सामने एक बात करते थे कफाना यानी हमारे लिए काफ़ी है, माँ वजब ना अले या आबा आना, हमारे लिए काफ़ी है वो जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें दिया, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। एक दलील जो हर नबी के सामने उसके उम्मत उसके सामने जो कौम लाती थी वो ये करती, हमारे लिए काफ़ी है वो जो हमारे आबाओ अजदाद से हमें मिला है, हमारी रसूमात हमारी आबाई रसूमात उसको इस काम का हिस्सा बना दिया जाता था, यह हमारे साथ भी है। अब देखें मैं अभी एक मजलिस में मगरिब से पहले वहाँ पे एक चीज़ अर्ज कर रहा था कि शादियाँ और मजालिस ये दो काम, एक बहुत खुशी की और एक गम की, इस्लाम के अंदर ये दोनों काम सबसे कम खर्चे वाले काम हैं, सबसे कम खर्चे वाले काम जो असल इनकी आइडेंटिटी है इनकी हैसियत है, लेकिन दोनों को हमारे कल्चर ने आबाई कल्चर ने महंगा बना दिया। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए आज एक बेटी की शादी ऐसे कर रहे होते हैं जिस खर्चे के ऊपर चारों बेटियों की शादियां हो सकती हैं, लेकिन ये बेचारा दो दो साल मोहलतें मांग के जहेज जमा कर रहा होगा, ये इस्लाम ने इससे नहीं कहा था इसको, बल्कि बोझ किसने डाला, ये कल्चर ने डाला, वो आबाई उसके अंदर के नहीं हम इतने ही देंगे, चूंकि उसमें ये बैंक्वेट था तो इसमें भी यही बैंक्वेट होगा, उसमें वो फर्नीचर था तो इसमें भी यही फर्नीचर होगा, शादियों को ये कर दिया गया। अब ये इस्लामी शादियाँ नहीं रहेंगी उस तरह से, ये कल्चरल शादियाँ बन गई, जहमत बन गई, मुश्किल बन गई ये खानदान के लिए बाप के लिए। और पहले ज़माने में इस्लाम के अंदर शादियाँ ऐसी होती थी कि नबी अकरम ऐसे जोहर और असर की नमाज, ये कितनी रवायत हमारे पास ऐसी है, नबी अकरम ने जोहर की नमाज पढ़ाई, पलट के देखा हाँ भाई कोई जवान है किसी को शादी करनी है, मेरे जवान के तो खुश हो गए। नबी अकरम ने देखा किसी जवान को शादी करनी है, उसने कहा हाँ मुझे शादी करनी है, नबी अकरम ने कहा कौन उनको अपनी बेटी देगा, चंद लोगों ने मसलन कहा कि वॉलंटियरली भाई मैं अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूँ, नबी अकरम ने कहा आप दे, बस वो जोहर और असर के दरमियान शादी हो गई और कहा कि ठीक है बुला लीजिए, यही वाली निकाह होगा मस्जिद नबी में शादी हो गई खबर। जो बिल्कुल आसान तरीका हम कम खर्च तरीका, लेकिन कल्चर की एडिशन में आबाई रस्म रिवाज ने उसको ये बना दिया। इसी तरीके से एक और एडिशन जो इसके अंदर हुआ, एक आबाई एडिशन हुआ और एक एडिशन ये हुआ कि कुछ लोगों ने इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं समझी, यानी कि दरबारी उलमा बिके हुए उलमा जिनको पैसे देके इस्लाम की कुछ ना कुछ बनवा दो, जो मैंने आपको बताया बनू मैं ये कि पूरी मशीनरी इस पर लगी थी किसी तरीके से अली की वो शख्सियत गिरा दो जिसके बाद हमें हुकूमत का हक हासिल हो जाएगा, डाइल्यूट करने का ये तरीका, एक आबाई रसूमात इसके अंदर लेकर आ जाओ। एनन क्या हमारे माशरे में वही सूरत हाल नहीं है इस्लाम की, कि इस्लाम के नाम पर जो कुछ हमारे माशरे में आ चुका है, सिस्टम इस्लामी नहीं है, हाकिम इस्लामी नहीं है, मतलब हाकिम को अगर देखें तो हाकिम के उन 6 फुट के जिस्म पे खुद उसके ऊपर इस्लाम नाफिज नहीं है कि वो सोसाइटी के अंदर इस्लाम को नाफिज करें, और साथ साथ ये हमारी आबाई इस्लाम इसकी वजह से फिर प्रोग्रेस रुक जाती है। अब इसको इमाम खुमैनी ने बाकायदा नाम दिया, इमाम खुमैनी का ये उस वक्त के भी बनू उमैया ने ये काम किया था, वो जो जालिम जाबिर सिस्टम होता है जो उसके ऊपर गवर्न करना चाह रहा था वो ये काम करता है। इमाम खुमैनी ने 1975 के दरमियान इमाम खुमैनी ने पूरा इसको मुदव्वन किया, प्योर मोहम्मद इस्लाम इसका नाम होता, इस्लाम नाबे मोहम्मदी दुरूद भेजो मोहम्मद अली नाम है मोहम्मदी, इमाम खुमैनी ने इसका नाम दिया और पूरा इसको मुदव्वन किया और इसको कहा कि दो किस्म के जो इमाम खुमैनी की सलाह थी مکسڈ اسلام، اسلام انتقادی اور ایک تہجر کا اسلام. تہجر کا اسلام امام خمینی کہتے تھے کہ یہ وہ اسلام ہے کہ جو فقط انڈیویجول چیزوں کے اوپر بات کرتا ہے، پالیٹکس پہ اور سوشل سوسائٹی بلڈ اپ کرنے کے اوپر بات نہیں کرتا. تہجر کا اسلام یعنی تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی، اپنی نہ بھیڑ، تو سب اپنا اپنا دیکھو، کوئی مل کے کوئی کام مت کرنا، سب اپنا اپنا. یہ جو سید الشہداء نے کام کیا کہ میرا ذکر جاری رہے، فرشہ کے اوپر آ کر بیٹھو، اور آئمہ کہتے تھے اس کی برکت ہے. کل بھی میں ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ خصوصاً پہلی محرم سے دس محرم تک فرش اذان کے اوپر آ جانا بہت بڑی فضیلت ہے، خدا جانتا ہے بہت بڑی فضیلت ہے. اگرچہ ابھی ہمارے پاس دور ہے سوشل میڈیا کا، لائیو ہم سن سکتے ہیں، بہت سارے اسکالرس کو سنتے بھی ہیں کہ ایک وقت میں آپ کہاں کہاں جائیں گے، لیکن کسی ایک فرش اذان جو آپ کے بالکل قریب ہو، آپ کا کمفرٹ زون ہو، آپ وہاں پہ ضرور فرش اذان کے اوپر اپنے بچوں کو لے کر آپ یہ سید الشہداء چاہتے تھے. اور یہ جملہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے درود محمد نے پوچھا اپنے احباب سے. اب یہ میں آپ کو فرشتوں پر آنے کی تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، کبھی جگہ نہیں ہوتی، کبھی گرمی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اپنی فضیلت کا اندازہ ہو. امام آپ کے لیے جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور بڑا بہترین جملہ، اور صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے ذکر کے لیے کبھی بیٹھتے ہو؟ حل تجلسونا، کیا تم لوگ آپس میں ساتھ بیٹھتے ہو جس میں ہمارا تذکرہ کرتے ہو؟ اور آگے میں بتاتے ہیں، فاحیو ابرنا، اگر بیٹھتے ہو نا ایسے تو ہمارے امر کو زندہ کرو. پھر بعد میں آئمہ نے فرمایا کہ ہمارے امر سے مراد امامت اور ولایت ہے. اس امامت اور ولایت کو کھول کے بیان کرو، لوگوں کو کلیئر کرو کہ امامت اور ولایت سے مراد کیا ہے. کوئی اسے فقط محبت نہ سمجھے، اور کوئی اسے دوستی کے اندر ڈائیلیوٹ نہ کر دے، مکس نہ کر دے امامت اور ولایت، وہی جو اسلام کے ساتھ کیا. تو امام نے فرمایا اگر تم یہ کام کرتے ہو، اب وہ جو انی احبہا، میں محبت کرتا ہوں ایسی مجلسوں سے، ایسی محفلوں سے، ایسے تمہارے ساتھ بیٹھنے سے. قربان جائے انسان اس دل کے اوپر جو ہمارے لیے آج یہ روایت کہہ کر چلا گیا کہ ہم محبت کرتے ہیں، کہ ہم آپ کا تذکرہ مل کے ساتھ بیٹھے تو ہم اس حالت سے محبت کرتے ہیں. معاملے میں محبت کرتا ہوں اس طرح سے، جو ایسی مجلس میں بیٹھتے ہوں جو ہمارا ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور سب مل کے بیٹھے. بس یہ ایک امر جو آج آپ کی خدمت میں عرض کیا، حسینی طرز زندگی جو سید الشہداء اس وقت کر رہے تھے کہ لوگوں کے دین کو پیوریفائی کریں. لوگ کچھ کچھ آئیڈیلز ایسے بتائے جائیں، ویلیوز ایسی بتائی جائیں، ان کو بتایا جائے جو ہاتھ میں تمہارے اسلام ہے دراصل تمہارا دودھ ہی ناخالص ہے، تو اس دودھ کو پی کے تمہارے اندر تمنائی نہیں آئے گی، یہ تمہیں یہ تمہارے لیے مکمل غذا نہیں ہے، چونکہ یہ اپنی وہ اصلی آئیڈینٹی کھو چکا ہے، اصلی حالت کھو چکا ہے. جب دودھ ہی خالص نہیں ہوگا تو مسلمانی کیسے خالص ہو سکتی ہے؟ جب دودھ ہی خالص نہیں ہوگا تو وہی والی بات کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تمہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا تمہاری نگاہ کو، تمہیں وہ دکھائی نہیں دے رہا جو ویژن میں دکھانا چاہتا ہوں، جو نظارہ میں کرانا چاہتا ہوں. بس یہاں پر سید الشہداء ایک ایک کو ڈھونڈ کے اس پیوریفیکیشن کا عمل کر رہے تھے. راستے کے اندر جب مکہ سے نکلے گئے، آج سید الشہداء کے ایک عجیب صحابی کا تذکرہ کرنا ہے، تو جس کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل سنت کی ایک کافی تعداد سید الشہداء کے لشکر میں تھی، اور وہ اہل سنت یعنی جو اسلامی عثمانی مسلک کے تھے، خلافت کو ماننے والے تھے، لیکن دیکھ رہے تھے کہ یزید کے خلاف، یزید کا انکار تو بہت لوگ کر رہے ہیں. اس زمانے میں بھی عبداللہ ابن عمر نے یزید کا انکار کیا تھا، عبداللہ ابن عباس نے یزید کا انکار کیا تھا، یہ وہ سب لوگ ہیں جو کربلا میں نہیں آئے. اسی طرح عبداللہ ابن زبیر یزید کا انکار کیا تھا، انکار بہت سے لوگوں نے کیا تھا، لیکن یزید کے خلاف ریزسٹنس نہیں شروع کی تھی، انکار کیا تھا، مزاحمت نہیں کی تھی. یہ سید الشہداء کا کمال تھا کہ ایک ریزسٹنس موومنٹ یزیدی سسٹم کے خلاف شروع کرنا. ان میں سے ایک زہیر بن قین تھے جو اہل سنت تھے، اور مسلک کے خلافت اور مسلک کے عثمانی کو ماننے والے تھے، اس وقت یہ شناختی ہوئی تھی. مکہ سے جب روانہ ہوئے، سید الشہداء نے اپنے احرام کو اتار کے اپنے عمرے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، حج نہیں کیا. وہ دلیل آپ کو دی تھی کہ سید الشہداء صرف فرش اعضا پاک ہونے پہ راضی نہیں ہوتے جب تک عرش اعضا بھی پاک ना हो ऐसे हज को सैयद शौदा ने बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जो किसी की हुकूमत के नीचे होता हो। आज भी ऐसा हज आपको पता है गुजर से एक बरात मुशरिकीन का जो हज के अंदर मनसा के मनासिक में से तकरीबन खत्म हो चुका है। और फिकही एतबार से भी तमाम फुकहा तशय्यो के वो अफराद जो बरात मुशरिकीन नहीं करते उनका हज कबूल नहीं है। वो हज इब्राहिमी नहीं है जो आज के जिंदा शैतान को ना छेड़ता हो, जो आज के तीन पत्थरों के शैतान को कंकरियां मारना ये सिंबॉलिक है। वो जो आज वहां से वो हुनर सीख के ना आता हो, जो इब्राहिमी हुनर सीख के ना आता हो, तो जब पत्थरों को कंकरियां मारे तो इन तीनों शैतानों को अपने जमाने में इनके मिसाक को पहचान लो। मसलन अमरीका, बरतानिया, इसराइल, बहुत वाज़े है। जो आज के जिंदा शिमर इसराइल, आज के जिंदा यजीद अमेरिका, आज के जिंदा उमर साद यानी बरतानिया, जिनका पैसा, जिनका सिस्टम, जिनकी हाकिमियत, ये काफिर हरबी हैं। आज की इस्लाम में काफिर हरबी, मतलब ऑस्ट्रेलिया काफिर हरबी नहीं है, काफिर है। रशिया काफिर है, चाइना काफिर है, काफिर हरबी नहीं है। इन पे वो लानतें, वो नहूसतें कि जो आइमा ने काफिर हरबी के लिए लानतें की हैं वो इनके ऊपर नहीं जाती। ये काफिर ममालिक हैं लेकिन इस्लाम से हालत जंग में नहीं है, लेकिन ये ममालिक ये जिंदा शैतान है। इमाम खुमैनी की इत्तला है कि शैतान अकबर कि तमाम अभी फलस्तीन के गजिये में आपने देख लिया इंशाल्लाह, कल आपकी खिदमत में इसको थोड़ा सा खोल के मैं बयान करूंगा, मजलूमियत और इमाम हुसैन। बस यहाँ पे ज़ुहैर बिन क़ैन का किरदार बड़ा अजीब है। अहले सुन्नत है हमें ये सैयदुल शुहदा ये सिखा रहे हैं, तुम अपनी फर्शियाज़ा पे एक ऐसे मसलक को भी जो मेरी इमामत को नहीं मानता तुम्हें उसको एक तो लेकर आना है, और कितनी तैयारी करनी है, कितनी संजीदगी, कितनी तुम्हारी सीरियसनेस होनी चाहिए, कितना तुम्हारे लिए ये सीरियस इशू होना चाहिए। क्यों हुसैनियत से एक अहले सुन्नत मेरी जान, मेरा जवान, वो मुसलमान दूर है, ये मेरी वजह से तो नहीं, कोई मेरा कोई मैंने तो कोई कमी नहीं की। सैयदुल शुहदा ने उमरे को हज में, हज को उमरे में तब्दील किया, निकल गए थे। ज़ुहैर बिन क़ैन ने हज का इरादा किया, हज किया मक्के से, जब ज़ुहैर निकले सैयदुल शुहदा निकल चुके थे। अब ज़ुहैर को मालूम था रास्ते में मक्के से निकलते हुए कूफे की जानिब रास्ते में इमाम हुसैन से मुलाकात हो सकती है, लेकिन ज़ुहैर वो उस्मान के कत्ल के बाद, खलीफा सेवुम के कत्ल के बाद उस प्रोपेगंडे का शिकार थे जो उस वक्त अमीर शाम ने किया था कि इनके कत्ल के अंदर अमीर अल-मोमिनीन नाऊज़ु बिल्लाह मुलव्वस है। वो प्रोपेगंडा ज़ुहैर के ज़हन में था और सैयदुल शुहदा चाहते थे डिस्कशन करूँ, बैठूँ, समझाऊँ, लेकिन ये मोहलत कहीं आ रही थी कि इनका आमना सामना हो जाए। जब ज़ुहैर को मालूम हुआ कि हम भी जा रहे हैं कूफा की जाने, हुसैन का भी लश्कर गए, जहां सैयदुल शुहदा कारवान चलाते ज़ुहैर वहां रुक जाते। अब जहां ज़ुहैर का सैयदुल शुहदा कारवान रोकते ज़ुहैर चलना शुरू करते थे ताकि आमना सामना ना हो। एक मकाम ऐसा आया कि जिस मकाम के ऊपर सैयदुल शुहदा को मालूम हो गया कि यहाँ पे ज़ुहैर तशरीफ फरमा है, सैयदुल शुहदा ने अपना कारवान रोका, अपने कासिद को बुलाया, खैमे की निशानदेही की कि वो ज़ुहैर का खैमा है, जाकर उसको दावत दो और कहो मेरा नाम लेकर हुसैन तुम्हें बुला रहे हैं। अब ज़ुहैर जिस घड़ी से बच रहे थे अब तक वो घड़ी आ गई। तारीख के अंदर दामाने वक्त में गुंजाइश नहीं है कि तफसील से बयान करूं, ज़ुहैर के हाथ में निवाला था, बस ये सुनना था जब कासिद ने कहा आपको हुसैन बुला रखेंगे तो निवाला वैसी का वैसी रह गया और वो नीचे रख दिया। बस इसी लम्हे से ज़ुहैर डर रहे थे, लेकिन ज़ुहैर ने भी एक जसारत की, कहा हुसैन से जाके कह दो कि मैं माजरा चाहता हूं, मैं आपसे मुलाकात नहीं करना चाहता। अब जब ये लफ्ज सुने, रवायत में आया कि इसी खेमे के बराबर में खवातीन का खेमा था जहां पे ज़ुहैर की जौजा भी थी, ज़ुहैर अपने कारवान के अंदर अपने जौजा के भाई अपने गुलाम के साथ थे। अब यहां पर जौजे ज़ुहैर ने ज़ुहैर को गैरत दिलाई, खेमे से बाहर निकली, ज़ुहैर ये मैं क्या सुन रही हूं, तुझे मालूम है तुझे कौन बुला रहा है, तुझे नबी का नवासा बुला रहा है, तुझे अली का बेटा बुला रहा है, ज़ुहैर तुझे फातिमा का बेटा बुला रहा है, अगर तुझे बात नहीं माननी कम से कम जाकर हुसैन इब्ने अली की बात सुन ले, और ज़ुहैर अगर तू न गया तो मैं खुद जाऊंगी ज़हरा के बेटे की बात सुन। जुमला بس یہ جملہ سننا تھا زہیر کو کہہ رہا تھا. بس یہ آج کی خواتین کے لیے بہت بڑا میسج ہے. وہ مرد جو کسی بھی میدان میں نہ نکل رہے ہوں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, جو خاتون شاپنگ سینٹر تک مرد کو لے کے جا سکتی ہو, وہ خاتون میدان کربلا تک بھی لے کے جا سکتی ہے. بس یہ پوٹینشیل خاتون کے ہاتھ میں ہے. اپنے دور کی کربلا میں اپنے مردوں کو اتار سکتی, اپنے بھائی کو اتار سکتی, اپنے بیٹے کو اتار سکتی, اپنے شوہر کو اتار سکتی. خداوند متعال نے یہ ہنر دیا. اب یہاں پر جب جیسے یہ سونا زہیر گئے قاسم کے پیچھے پیچھے, اب یہاں پر تاریخ نے یہ مکالمہ سید الشہداء کے خیمے میں جاتے ہیں بہت بہت کم ٹائم کے لیے, فیو مومنٹس, بہت کم تاریخ میں آیا, بہت کم ٹائم کے لیے ملاقات ہوئی, لیکن بس زینت ملاقات تاریخ کے اندر سب نہیں. کیا بات ہوئی دونوں کے درمیان, کیا مکالمہ ہوا, مقاتل کی تمام کتابیں خاموش. کیا بات, لیکن بس کچھ ہی لمحے گزرے تھے, زہیر باہر آتے گئے اور اپنے کاروان والے سے کہتے گئے کہ اے کاروان والوں, میرا سامان الگ کر لو, اپنا سامان الگ کر لو. اب یہ جملے سننے تھے. ارے زوجہ زہیر نے جب یہ سنا, ارے زہیر ایک دم سے کیا ہو گیا, ابھی تو حسین کے پاس جانے سے معذرت کر رہے تھے اور اب یہ خیمے میں یہ کیسا انقلاب آ گیا کہ اب تم ہم سے جدا ہو لگے ہو. اب زوجہ زہیر نے جب یہ پوچھا تو زہیر نے کہا میری منزل جدا ہو گئی, میرے کاروان کی منزل جدا ہے, اب مجھے حسین کے ساتھ جانا ہوگا. ارے مجھے وہ راز معلوم ہو گیا, ارے اس کاروان کا حصہ بننا ہوگا, اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کاروان کا نتیجہ شہادت ہے. ارے جب اپنی زوجہ سے کہا اس کاروان کا نتیجہ شہادت ہے تو جانتے ہو زوجہ زہیر نے کیا کہا, کہا کہ ارے اے زہیر کیا ہمیں تنہا چھوڑ کر جاؤ گے, اے زہیر ہمیں تنہا چھوڑ کر جاؤ گے. زہیر نے کہا اس کاروان میں تمہاری جگہ نہیں ہے, ارے تم نہیں آ سکتی. اب یہ پریشان کہا زہیر ارے ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے, ارے مشکل کیا ہے, میں جانتا ہوں. زہیر نے کہا عرب کا قانون مجھے پتہ ہے, ارے عرب کے اندر رواج ہے جب مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ان کی عورتوں کو کنیز بنا کر لے جائیں, ارے اپنی کنیزی میں رکھ لیں, ارے میں یہ منظر نہ دیکھ پاؤں گا, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میرے پاس میری اسیر رہے اور اس کے بعد دشمنوں کی اسیر ہو جائے. ارے میں تجھے آزاد کرتا ہوں, میں تجھے طلاق دیتا ہوں, میں تجھے جدا کرتا ہوں, میں نہیں دیکھنا چاہتا. اب زہیر کی زوجہ نے کہا ارے یہ جو اونٹوں کے اوپر نبی زادیاں ہیں, ارے یہ جو علی کی بیٹیاں ہیں, ارے یہ جو حسین کی بیٹیاں ہیں, ارے ارے یہ بھی تو حسین کے ساتھ جا رہی ہے. اب سن سکو گے کیا کہا, ارے زہیر نے کہا ارے اے زوجہ, ارے تو اپنے آپ کو نبی کی بیٹیوں سے مقایسہ کر رہی ہے, ارے تو کہا اور علی کی بیٹیاں کہا, ارے وہ نبی زادیاں ہیں, ارے ان کے ساتھ ان کی طرف تو کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا, ارے تجھے کربلا میں کون پہچانے گا, ارے تجھے کوفے میں کون جانتا ہے, ارے تجھے بازاروں میں کون جانے گا, ارے تیری کیا حیثیت ہے, ارے وہ علی کی بیٹیاں ہیں. اب یہ دلیل دے کر زوجہ زہیر کو راضی کر رہا تھا. اب زہیر نے جب راضی کیا تو زوجہ نے کہا فقط ایک شرط پر جانے دوں گی, ایک شرط ہے, اے زہیر میں جانتی ہوں تو اس کربلا کے بعد شہید ہو جائے گا, ارے تجھے شہادت ملے گی, تو نانا نبی کے پاس بھی جائے گا حسین کے, ارے تو ماں سیدہ کے پاس بھی جائے گا حسین کی, ارے اس مادر گرامی سے جا کر اس کنیز کا سلام کہنا اور زہرا سے کہنا آپ کی ایک کنیز, ارے آپ کی شفاعت کی منتظر ہے اگر تو وعدہ کرتا ہے. زہیر نے وعدہ کیا. اب صاحب نے وقت میں گنجائش تکی ہے, ارے زہیر کی جنگ پیش کر سکوں, زہیر کی شہادت پیش کر سکوں. بس کربلا میں شام غریبہ ہو گئی, بس کربلا میں اثر عاشور ہو گیا, بس زہیر کی شہادت ہو گئی. اب جب 12 محرم آئی ہے, اب یہ کاروان جو کوفہ کے اندر زہیر کا سر نیزوں پر, زوجہ زہیر نے دیکھا آتا ہوا سمجھ گئی کربلا میں وہ ہو گیا جو ہونا تھا, ارے وہ مار کا ہو چکا. اب اپنے غلام کو بلا کر کہتی ہے ارے میرے زہیر کا سر آ رہا ہے, پتہ نہیں کربلا میں, ارے میرے زہیر کو کوئی نہیں جانتا, تو یہ سفید کپڑا پکڑ, تو یہ کفن لے کر جا, ارے اے غلام جلدی کر گھوڑے پہ سوار ہو, ارے میرے زہیر کو کربلا کے میدان میں کون جانتا ہے, ارے حسین تو نبی کا نواسا ہے, ارے حسین کو تو سب پہچانتے گئے, ارے مولا کو تو کوئی دفنا دے گا, ارے لیکن میرا زہیر کربلا کے میدان میں بے گھر و کفن, ارے بغیر غسل و کفن اور دفن کے پڑا ہوگا, تو جلدی کر فقط میرے زہیر کو دفنا کے آ जा, अब इसने घोड़े को ईंट दी, अरे कर्बला में पहुंचा, अरे वहां पहुंच कर क्या मंदिर देखता गए, अरे वो मंदिर देखना था, अरे उसी कफन को लेकर वापस आता गए, अरे जोजा जोहेर के सामने जब आया, अबा का दामन हटा के कफन दिखाया तो जोजा ने कहा अरे ये कफन वापस क्यों लेकर आया, हाय रे किस्मत, क्या जोहेर को किसी ने दफना दिया था, अरे बस ये सुनना था, इसने अपने आप को पीटना शुरू किया, अरे ऐ जोजा तू अपने जोहेर को रो रही है, अरे करवला की जमीन पर नबी का नवासा, अरे अली अकबर, अरे अब्बा, अरे अली की बेटिया, अरे मेरे पास एक कफन था लेकिन करबला में ढेरों जनाजे थे, मुझे शर्म आ रही थी, अरे मैं ये जला था, अरे ये कफन जोहेर को दे दूं, लेकिन हुसैन बेगोरो कफन करबला की जमीन पर।
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلب منقلب دیگر عالم تیرے